हम सब मिज़ान में आप लिखते हैं कि कुरान की ज़बान अरबी है, जो कि राजी और जमखशरी की अरबी और आज की अरबी से मुख्तलिफ है। इस बात का अमली सबूत कुछ हफ्ते पहले मैंने खुद देखा, जब बर्लिन की एक अरबी मस्जिद में कुरान की एक आयत की तशरीह की गर्ज से मैं गया, और अरब से आए हुए एक अरबी स्पीकिंग इमाम साहब जिस तरह उस आयत के अल्फाज से नाआशना नज़र आए, उससे यही मालूम हुआ कि ये असल में उनकी अपनी जबान नहीं है। तो गांधी साहब, जहाँ हर दौर में मुस्लिम उम्मत के ने कुरान के तराजिम, तफासीर, हदीस की जमा तदवीन वगैरह जैसी गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, वहीं महसूस होता है कुरान की जबान और वोकेबलरी की हिफाजत करने में हम लोग नाकाम हुए हैं। और अगर हम इसे इरतकाई मराहिल का हिस्सा भी समझते हैं, तो क्या आज के उलमा, खसूसन मदरसा फराही के कुछ उलमा को मजीद तफासीर के बजाय ऐसी रेफरेंस बुक्स लिखने को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए जिनमें अरबी मुअल्ला के मुताबिक कुरान के हर लफ्ज़ के तमाम मुमकिन मफाहीम दर्ज हों और कुरान का आम कारी भी सियाक व सबाक में तदब्बर के साथ लफ्ज़ के दुरुस्त मफहूम तक पहुँच सके?
वाजे ठीक।
और क्या आपके रिसर्च सेंटर में ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम हो रहा है?
बहुत माजरत के साथ आपने दो बातों को मिला दिया। एक है ज़ुबान का बोलने में महफूज रहना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ज़ुबान बतदरीज तब्दील होती चली जाती है, असालीब बदलते चले जाते हैं, इलाकाई ज़ुबानें, इलाकाई लहजे वजूद में आ जाते हैं। मैंने ख़ुद अपने तालबिल्मी के ज़माने में ये तजर्बा किया कि लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ फ़लस्तीन के और मिस्र के बाज़ तलबा पढ़ते थे, उनके माबैन गुफ्तगू में जब वो अरबी ज़ुबान बोल रहे होते थे तो फ़हम के मसाइल पैदा हो जाते थे। एक लहजा इस तरह का था, दूसरा दूसरी तरह का था। तो ये बोलने की ज़ुबान है। इसी तरह अगर किसी आलिम को आपने देखा है तो हो सकता है कि वो कुरान मजीद की ज़ुबान से उस तरह वाकिफ़ ना हो। एक दूसरी ज़ुबान वो है जो इल्म की ज़ुबान होती है, इल्म की ज़ुबान जिसको फुसा कहते हैं, वो बड़ी हद तक अपने आप को बरकरार रखे हुए है। उसमें भी तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें भी तगयुरात हुए हैं, लेकिन उसका बुनियादी स्ट्रक्चर वही है जो कुरान ने कायम कर दिया था। इस वक्त भी जब कोई बड़ा आलिम, बड़ा अदीब लिखता है तो वो वही ज़ुबान लिखता है, कुरान मजीद के ज़माने की ज़ुबान आप कहिए, ताहम कुरान मजीद के ज़माने के असालीब में नहीं लिखता। उसमें भी तब्दीलियाँ, तगयुरात आते रहते हैं। जैसे हम गालिब के ज़माने की उर्दू पढ़ते हैं तो वो वही उर्दू है, लेकिन उसका उसलूब अब वो नहीं है जो मिसाल के तौर पर इस वक्त के हमारे यहाँ अखबारात की उर्दू का है, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। एक तीसरी चीज़ ये है कि जो ज़ुबान कुरान में इस्तेमाल हुई है, क्या मुसलमानों ने उसकी हिफाजत नहीं की? यानी ये तो अमलन लिखने में, बोलने में जो कुछ हुआ है उसका बयान है। इतनी गैर मामूली हिफाजत दुनिया की कोई कौम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जैसे मुसलमानों ने की है। यानी कुरान मजीद के अल्फाज पर बेपनाह काम हर दौर में होता रहा है, बेशुमार चीज़ें लिखी गई हैं। कुरान मजीद की नहव या जो जुमलों की तारीफ़ के कवायद हैं उन पर इसी तरीके से अहद बहद मुसलमान काम कर रहे हैं और उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह का मामला कुरान मजीद के असालीब का है। तो ये सब चीज़ें इल्म की दुनिया में बिल्कुल महफूज हैं। मदरसा फराही के लोग अगर इस वक्त काम कर रहे हैं या करेंगे तो क्या उनको आसमान से इल्हाम होगा? वो मुसलमानों का महफूज करदा वही इल्म है जिसकी बुनियाद पर काम करते हैं। तो इसको ज़रा बेहतर कर लीजिए, यानी सूरत हाल इस तरह नहीं है। ये तीन अलग अलग बातें हैं और इनको अलग अलग समझना चाहिए। कुरान मजीद की ज़ुबान के इल्म की हिफाजत बहुत गैर मामूली तरीके से हुई है। कुरान मजीद का उसलूब और कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ, उस वक्त की ज़ुबान ने भी इल्मी ज़ुबान की हैसियत से, अदबी ज़ुबान की हैसियत से अपने आप को फिलजुमला बाकी रखा है। अलबत्ता मुकामी लहजे, बोलने के अंदाज़, वो इराक़ के और हो गए, मिस्र के और हो गए, سعودی عرب کے اور ہو گئے، باقی جگہوں کے اور ہو گئے، تو یہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے الگ سے۔